उपस्थित देवी और सज्जनों, बड़े हर्ष का विषय है स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित है। विषय है प्रैक्टिकल वेदांत, हिंदी में कहें तो व्यावहारिक वेदांत। वेदांत का क्या अर्थ होता है? सामान्य अर्थ तो ये होता है कि वेदों का अंत, और वेदों के अंतिम भाग में अधिकांश तक हम पाते हैं उपनिषदों को पाते हैं, इसलिए वेदांत का तात्पर्य हुआ उपनिषद। उपनिषद में क्या है? उपनिषद में ज्ञान की चर्चा है, जीव जगत के रहस्य का वर्णन है, आत्मा परमात्मा की बात है। जो उपनिषदों का, जो वेद का पहले का भाग है जिसे कर्मकांड कहा जाता है, उसमें हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है, कैसे यज्ञ किए जाएं कि संसार में रहते हुए हमें सुख की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो, मरने के बाद जब हम स्वर्ग जाएं तो वहाँ पर कैसे हमें उत्तम स्वर्ग मिले, सब प्रकार की सुविधा मिले, इसके लिए यज्ञों का विधान जिसे हम कर्मकांड कहते हैं, और उपनिषदों को कहा जाता है ज्ञान कांड। ये उपनिषद वेद के अंत में अधिकांश आते हैं, इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। और वेदांत का दूसरा अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद जो है संस्कृत की विद धातु से निकला है। विद का अर्थ होता है जानना, इस तरह वेद का अर्थ हुआ ज्ञान, और इसलिए वेदांत का अर्थ क्या हुआ? वेदांत का अर्थ हुआ फिर ज्ञान की पराकाष्ठा, अर्थात जहां पर ज्ञान उस एकत्व को प्राप्त होता है उसे वेदांत कहते हैं। जैसे हम कहते हैं फिजिक्स की पराकाष्ठा कहाँ होगी? फिजिक्स अगर ऐसे एक फोर्स को प्राप्त कर ले जिससे विभिन्न प्रकार के फोर्स, विभिन्न प्रकार के बल हम प्राप्त कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, एक ऐसा फोर्स हमें मिल जाए जिससे सब फोर्सों को हम प्राप्त कर सकें, वहाँ पर फिजिक्स का अंत हो जाएगा। केमिस्ट्री का अंत कहाँ होगा? केमिस्ट्री अगर ऐसे एक तत्व को प्राप्त कर सके, एलिमेंट को प्राप्त कर सके जिससे जितने एलिमेंट्स हैं वे सब प्राप्त किए जा सकें, उससे केमिस्ट्री का अंत हो जाएगा। वैसे ही यह वेदांत दर्शाता है मानो ज्ञान की पराकाष्ठा। वह ज्ञान की पराकाष्ठा कहाँ है? उसी एकत्व में है। वेदांत यह घोषित करता है कि संसार में केवल एक ही वस्तु है जिसे हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं, आत्मा के नाम से जानते हैं, और यह ब्रह्म ही संसार के सभी पदार्थों में अनुस्यूत है। हम सब के अंदर वही एक तत्व समाया हुआ है जिसे हम ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें या आत्मा कहें, और इस तत्व की अनुभूति करना ही मानव वेदांत का चरम लक्ष्य। तो इस तरह यह वेदांत केवल अगर सिद्धांत में रहे, केवल चर्चा में रहे, जैसे हमारे यहाँ ऋषियों ने अनुभव किया, वेदांत के द्वारा उपनिषदों का प्रणयन किया, उस तत्व की अनुभूति की, उन्होंने चार महावाक्य में इसे हमारे सम्मुख रखा, जिसे हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। दूसरा महावाक्य है तत्वमसि, तत्त्वम असि, अर्थात तुम वह हो, तुमका अर्थ जीवात्मा ही मानो परमात्मा हो, ब्रह्म हो, और अहम ब्रह्मास्मि, तीसरा महावाक्य है मैं ही ब्रह्म हूँ। चौथा है प्रज्ञानम ब्रह्म, कहते जो ज्ञान है प्रकृष्ट ज्ञान है वही ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म को कहा गया है सच्चिदानंद। ब्रह्म है सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत का तात्पर्य क्या, जो वस्तु तीनों अवस्थाओं में विद्यमान रहे उसे कहते हैं सत। यह हाल, इतना सुंदर हाल अभी है, 100 वर्ष पूर्व यह नहीं था, और मालूम नहीं 100 वर्ष के बाद रहेगा कि नहीं, इसलिए ये हाल सत्य नहीं हो सकता। संसार की जितनी वस्तुएं आज हम देख रहे हैं, हो सकता है 1000 वर्ष पहले नहीं थी, अभी हैं, 1000 वर्ष बाद रहेंगी नहीं, इसलिए इस संसार की सभी वस्तुएं जो हैं सत की श्रेणी में नहीं आती। पर ब्रह्म ही ऐसी वस्तु है जो अनादिकाल से था, अभी है, अनादिकाल तक रहेगा, इसलिए ब्रह्म को कहा गया है सत। ब्रह्म को कहा गया है चित, कहते हैं चित का तात्पर्य होता है ज्ञान। हम सबको ज्ञान की प्राप्ति होती है किस लिए, कि हमारे अंदर वह ब्रह्म विद्यमान है। ब्रह्म तत्व ही मानो हमें ज्ञान की अनुभूति कराता है, और इसी प्रकार ब्रह्म को कहा गया है आनंद। जो कुछ भी हम आनंद प्राप्त करते हैं शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, वह किस लिए, हमारे अंदर वह ब्रह्म आनंद स्वरूप ब्रह्म है, इसीलिए कहते ब्रह्म को आनंद कहा गया है। पर संसार के जो आनंद हमें मिलते हैं शरीर मन बुद्धि के माध्यम से, वे क्षणिक हैं, वे आज हैं कल को रहेंगे नहीं, पर यह ब्रह्मानंद ऐसा है जिसका कहना चाहिए कोई अंत नहीं, जो एक अनंत आनंद का स्रोत है यह ब्रह्मानंद। तो ऋषियों ने कहा यही हमारा वास्तविक स्वरूप है, और इसे ही मानो अनुभूत करना, इसे ही प्राप्त करना, इस वेदांत को जीवन में अनुभव करना ही, यही व्यावहारिक वेदांत है। केवल वेदांत अगर शास्त्रों में रहे, केवल उसका हम उच्चारण करते रहें, तो वह वेदांत नहीं रहेगा, वह वेदांत का मखौल उठाना होगा। वेदांत में कहा गया है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव कनापरः, कहते एक मात्र अगर सत्य वस्तु है वह है ब्रह्म, और सारा संसार मिथ्या है। इसे हम अगर यही करते रहे, अरे संसार तो मिथ्या है, यही तो हुआ था 1000 वर्षों से, इस वेदांत का ऐसा दुरुपयोग, हमने संसार को मिथ्या मान लिया, और बस इसलिए संसार को छोड़ दो, मिथ्या है, इसे त्याग कर दो, और इसलिए इस देश की ऐसी दुर्गति जो होती है, इसका वेदांत का जो हमने दुरुपयोग किया उसे जीवन में उतारा नहीं, इसलिए इस देश की ऐसी दुरवस्था। इस युग में आते हैं श्री रामकृष्ण, आते हैं विवेकानंद, आते हैं और बताते हैं कि कैसे यह वेदांत हमारे जीवन में, कैसे इसे उतारा जा सकता है। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में थे, वहाँ पंचवटी में उन्होंने सुना एक साधु आया हुआ है, अपने को वेदांती कहता है, पर वह अनाचार करता है, स्त्रियों के साथ अनैतिक संबंध है। एक दिन पहुँचते हैं श्री रामकृष्ण के पास, कहते हैं क्यों जी, तुम तो वेदांती हो ना, वेदांत की चर्चा करते हो, फिर मैंने तुम्हारे बारे में ये क्या सुना, किस तरह से तुम अनैतिक जीवन बिता रहे हो। उसने कहा महाराज मैं आपको समझाता हूँ, देखिए महाराज वेदांत क्या कहता है, संसार मिथ्या है कि नहीं। श्री रामकृष्ण अच्छा ठीक है, हाँ कहता है, ठीक है शास्त्र कहता है, तो मैं ये जो करता हूँ वो मिथ्या है कि नहीं, यह भी तो मिथ्या हुआ, इसलिए मैं तो वेदांत को ही फॉलो कर रहा हूँ, वेदांत का ही अनुसरण कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वह सत्य कहाँ है, एकमात्र सत्य तो ब्रह्म है। श्री रामकृष्ण कहते मैं तुम्हारे ऐसे वेदांत पर मूदता हूँ, ऐसा वेदांत नहीं जाएगी। इस प्रकार वेदांत का जो दुरुपयोग हुआ, इस युग में आते हैं भगवान श्री राम के स्वामी विवेकानंद, वेदांत के सही अर्थ को हमारे सम्मुख रख जाते हैं, इसलिए वेदांत घोषित करता है तुम हाड़ मांस के पतले नहीं हो, तुम इंद्रियों के सनसनाहट मात्र नहीं हो, तुम यथार्थ में ब्रह्म स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, अपने आप को पहचानो। क्या हमारी अनुभूति होती? नहीं होती। हम अपने आप को तो शरीर ही समझते हैं, हम अपने आप को मन समझते हैं, शरीर और मन के अतिरिक्त को समझते हैं क्या? नहीं समझते। जरा विचार करके देखिए, एक लिंकन बार्नेट हो गए, बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है उन्होंने, छोटी सी किताब है द यूनिवर्स एंड डॉक्टर आइंस्टीन। उसमें लिंकन बार्नेट लिखते हैं मैन हिमसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री, मनुष्य अपने आप में सबसे बड़ा रहस्य है। मैन हिमसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री, ही डज नॉट नो दिस वास्ट वेल यूनिवर्स इन विच ही हैज बीन कास्ट, फॉर द रीजन ही डज नॉट नो हिमसेल्फ। वह अपने आप को इसलिए, वह इस विस्तृत जगत में उसे डाल दिया गया है, उसे इसलिए नहीं जान पाता है क्योंकि वह अपने आप को नहीं जानता है। At least does he understand his noblest and most mysterious faculty of transcending himself and perceiving himself in the act of perception। बड़ी अद्भुत बात कहते हैं लिंकन बार्नेट। कहते हैं और तो और, उसके अंदर जो अत्यंत उदात्त क्षमता है अपने अंदर प्रवेश करके अपने आप को जानने की जो क्षमता है, उसके बारे में उसे तनिक भी जानकारी नहीं। मानो ठीक वेदांत की बात कहते हैं लिंकन बार्नेट। हमारे अंदर वह क्षमता है अपने आप के अंदर प्रवेश करके अपने आप को जानने की क्षमता है, पर हमें हम उसके बारे में हमें तनिक भी जानकारी नहीं। हम कभी अपने आप को शरीर समझते हैं, कभी शरीर नहीं समझते, कभी मन समझते हैं, कभी मन नहीं समझते, कभी बुद्धि समझते हैं, कभी बुद्धि नहीं समझते। जरा विचार करके देखिए, मैं कहता मैं बीमार हो गया, बीमार कौन हुआ है? बीमार तो शरीर हुआ है, पर कहता मैं बीमार हो गया, अर्थात मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूं। फिर कभी मैं कहता मेरा शरीर अस्वस्थ है, मेरा शरीर अस्वस्थ है, इसका तात्पर्य मैं अलग हूं शरीर अलग है। कहता हूं ये मेरा कुर्ता, इसका मतलब मैं कुर्ता तो नहीं हूं। जहां मैंने कहा मेरा शरीर अस्वस्थ है, मैं अपने आप को शरीर से अलग समझ रहा हूं। कभी मैं अपने आप को शरीर समझता हूं, कभी शरीर से अलग समझता हूं। कभी कहता मेरा मन बड़ा चंचल है, अर्थात मैं अलग हूं मन अलग है, मेरा मन बड़ा चंचल है। और फिर कभी मैं क्या कहता हूं, मैं बड़ा अस्थिर हो गया। अरे अस्थिरता तो जो है तो मन का गुण है। इस तरह से मैं अपने आप को मन समझने लगा, अर्थात कभी मन समझता हूं, कभी मन से अलग समझता हूं। मैं कहता हूं मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, इसका तात्पर्य मैं अलग हूं बुद्धि अलग है। मैं कहता हूं मैं निर्णय नहीं ले सका, निर्णय लेने का काम कौन करती? बुद्धि करती है। जहां मैंने कहा मैं निर्णय नहीं ले सका, अर्थात मैं अपने आप को बुद्धि समझने लगा, तात्पर्य मैं खुद नहीं जानता हूं मैं क्या हूं। ऋषियों ने बताया अरे तुम शरीर मन बुद्धि से परे तुम आत्मा हो जिसका कोई नाश नहीं। इसलिए अपने स्वरूप को पहचानना यही मानो व्यावहारिक वेदांत। और इस व्यावहारिक वेदांत की सबसे उत्तम अगर कोई ग्रंथ है वह है भगवद गीता। भगवान कृष्ण से वेदांत को कैसे व्यावहारिक बनाया जा सकता है, कैसे जीवन में उतारा जा सकता है, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। इसलिए इस गीता को तो उपनिषद भी कहा गया है। गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका हम पाएंगे जहां पर कहते हैं ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अमुक योग नाम अमुक अध्याय। कहते हैं श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, ये जो भगवद गीता है वह मानो उपनिषद है। वह उपनिषद तो ऋषियों ने रचे थे, पर ये ऋषि ये उपनिषद जो गीता उपनिषद है वह तो भगवान कृष्ण स्वयं इसका गायन करते हैं। और कहते हैं ब्रह्म विद्यायाम, ये ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, यह केवल ऐसे पढ़ने की वस्तु नहीं है, कार्य में इसे अनुभव करने की वस्तु है, इसे कार्य में परिणित किया जा सकता है। ऐसी श्रीमद् भगवद गीता आती है जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण बताते हैं कि कैसे यह जो वेदांत कैसे जीवन में उतारा जा सकता है। कहाँ बताते हैं भगवान कृष्ण? कहीं जंगल में बैठ करके नहीं बताते हैं अर्जुन को, बताते हैं ऐसे कर्म क्षेत्र में जहां पर युद्ध बिल्कुल होने वाला है, कौरव पांडव का युद्ध होने वाला है, जहां पर भेरियां बच चुकी हैं, नगाड़े बच चुके हैं, ऐसे समय में कृष्ण बड़ा, अर्जुन जो है बड़ा साहस से लबरेज कहता है कि कृष्ण युद्ध रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा करिए, मैं देखना चाहता हूं किनके साथ मुझे युद्ध करना है। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्छत यावत् एदान निरीक्षेहम योद्ध कामान अवस्थितान कैर्मया सब योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्य में। कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करो, मैं आज एक एक कौरवों को देख लूंगा, दुर्योधन को देख लूंगा, दुशासन को देख लूंगा। और जहां कृष्ण युद्ध के बीच में दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करते हैं, और जहां अर्जुन की दृष्टि जाती है कौरव दल की ओर जाती है, अब से उसे अपने दुश्मन नहीं दिखाई दे रहे, जहां देखता है सामने खड़े हुए रथ में बैठे हुए भीष्म पितामह बैठे हुए, द्रोणाचार्य बैठे हुए, कृपाचार्य बैठे हुए, यहां पर ये दुर्योधन दुशासन उसके भाई नजर आते हैं, दुश्मन नजर नहीं आते, ऐसा ये अर्जुन मोहाविष्ट हो जाता है। और कृष्ण से कहता है कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा, कृष्ण भले ये लोग मुझे मार दें पर युद्ध नहीं करूंगा। दुश्रेयम स्वजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति वे फतुष्य शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडीवम संसते हस्ता त्वचै परिदह्यते। बड़ी ज्ञान की बात करता, कहता है कृष्ण अरे इनको देख करके तो जो है मेरा सारा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरे अंग शिथिल पड़ते जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, गांडी मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, कृष्ण मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा। कहता ये तो जो हाथ ताई है कृष्ण निहत धात राष्ट्रान कापी स्यात जनार्दना आत तायनम आयंतम, ये तो आतताई हैं, इनको केवल मारने से तो हमें पाप ही लगेगा, कृष्ण हम ये युद्ध क्यों करें? बताइए ऐसे समय में भगवान कृष्ण की क्या अवस्था रही होगी? जिस अर्जुन के ऊपर सारा युद्ध का दारोमदार निर्भर करता है पांडव दल का, वही अर्जुन अगर कह दे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कृष्ण की क्या अवस्था होगी? और ये कह देता है अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण, ऐसे समय में भगवान कृष्ण का चरित्र हमारे सम्मुख दिखता है। यहां पर फटकारते हैं अर्जुन को, फटकारते हुए कहते हैं अर्जुन कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन। अरे ऐसे विषम स्थल में तेरे अंदर में ऐसा कलमश कहां से आ गया अर्जुन, ये कीचड़ कहां से आ गया तेरे मन, ये आर्यों के उपयुक्त नहीं है पार्थ, ये तो कैसी बात कह रहा है? क्लैब्य मास्म गमः पार्थ नहीं तत्पय उपपद्यते। अरे तू तो क्लीबता को प्राप्त हुआ अर्जुन, ये तेरे लिए योग्य नहीं, इस प्रकार कहना योग्य नहीं। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तु तिष्ठ परंतप, हृदय की इस दुर्बलता को त्याग और तो युद्ध के लिए तैयार हो। ये भगवान कृष्ण, कृष्ण क्या करते हैं? पहले दुर्योधन द्रोणाचार्य को तो बाद में मरवाते हैं, पहले मरवाते हैं भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, कर्ण को, इनको पहले मरवाते हैं। किसलिए? किसलिए कहते हैं ये जो भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, ये बड़े धार्मिक कहलाते हैं, धार्मिक होकर के साथ किसका दे रहे हैं? अधर्म के प्रतीक दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, इसलिए कहते हैं पहले इन्हें मार। ये भगवान श्री कृष्ण, कैसा धर्म को व्यावहारिक बनाया, वेदांत को व्यावहारिक बनाया जा सकता है, कृष्ण अपने जीवन के माध्यम से दिखाते। और किस तरह से मरवाते हैं द्रोणाचार्य को, जानते हैं द्रोणाचार्य बड़े पराक्रमी हैं, इनको मारना बड़ा कठिन है, इसलिए ये कहते हैं युधिष्ठिर से, कहते हैं देखो युधिष्ठिर हम अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा देंगे और हम घोषणा करा देंगे अश्वत्थामा हतः, तब गुरुदेव द्रोणाचार्य तुमसे पूछेंगे क्या युधिष्ठिर, क्या मैं सुन रहा हूं अश्वत्थामा क्या मर गया, तुम्हें कहना होगा मर गया। युधिष्ठिर बड़े सत्यवादी, कहते मैं ऐसे कैसे कह दूं हाथी मरा है और मैं कैसे कह दूं कि अश्वत्थामा मर गया। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर तुम ऐसा नहीं कहोगे तो कभी जीत नहीं सकते, दुर्योधन ही जीतेगा, तुम्हें ऐसा कहना ही होगा। ठीक है, मान जाते हैं युधिष्ठिर। ठीक समय पर अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा करके घोषणा करा देते हैं कृष्ण, अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा हता। पूछते हैं द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से, पूछते हैं युधिष्ठिर मैं क्या सुन रहा हूं, क्या अश्वत्थामा मर गया? युधिष्ठिर कहता है गुरुदेव हां अश्वत्थामा हता, पर भगवान कृष्ण उसकी इस दुर्बलता को जानते थे, जरूर गड़बड़ करेगा युधिष्ठिर। जहां युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हता, इतने जोर से नगाड़ा बजवाया कृष्ण ने, उसके बाद कह रहा है युधिष्ठिर अश्वत्थामा हता नरो वा कुंजरो वा, मुझे मालूम नहीं वह मनुष्य था ना हाथी था, पर इसके पहले नगाड़ा बजवा देते हैं, सुन ही नहीं पाते हैं द्रोणाचार्य की, नरो वा कुंजरो वा। ऐसे कृष्ण आते ये सब कहते हैं अरे कृष्ण ने तो छल से मरवाया, छल से नहीं, जिससे धर्म की विजय हो इसके लिए कृष्ण कहते हैं। कैसे भीष्म पितामह को मरवाते हैं, कैसे शिखंडी को सामने रख करके, जानते हैं भीष्म पितामह शिखंडी के ऊपर अस्त्र, शिखंडी के सामने अस्त्र नहीं चलाएंगे, और सचमुच में इस प्रकार भीष्म पितामह का नाश करा दें। कैसे धर्म को, इस वेदांत को व्यावहारिक बनाया जा सकता है ये कृष्ण बताते हैं, और कहते हैं कैसे, यस्य नाहम कृतो भावो यस्य बुद्धिर् न लिप्यते हत्वापि संयमान लोका न हन्ति न हन्यति। कहते हैं अगर जिसके अंदर में कर्तापन का भाव नहीं है अर्जुन, जिसकी बुद्धि जो है कर्म में लिप्यमान नहीं होती है, वह सबको मारने के बाद भी न वह मारेगा न मरेगा। कैसी बड़ी बात कहते हैं श्री कृष्ण। और आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे देश में देख रहे हैं कितने, आप सभी जानते हैं, अबोध बालिकाओं का रेप हो रहा है, निर्ममता से उन्हें मार डाला जा रहा है, सरकार एक कानून नहीं बना पा रही है दोषियों को दोष दे, कहते इनको फांसी नहीं मिलना चाहिए। अरे अरे जिन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है, बच्चियों का कोई दोष नहीं, उसको तुमने मार कर रेप करके उसकी हत्या कर दी, अब तो कहते इनको फांसी नहीं मिलनी चाहिए, कहां पहुंच गए हैं हम, कृष्ण के सिद्धांत से कितने दूर चले गए हैं। अरे नहीं फांसी देने से क्या होगा, अरे फांसी देने से कम लोगों के मन में भय तो आएगा, गलत काम करने का भय तो आएगा। ऐसा सशक्त शासन जब तक नहीं होगा इस देश का क्या होगा, किस तरह इस देश में अनाचार बढ़ा है, किस कारण से बढ़ा है, किस तरह से माता पिता मादा भ्रूण की हत्या करा दे रहे हैं, कैसे है? किस लिए करते हैं, स्वार्थ की भावना है तभी तो करते हैं। कहते हैं मादा भ्रूण है, लड़की पैदा होगी हमारे ऊपर बोझ हो जाएगी, अरे तुम क्या बच्ची को पालने वाले हो, किस प्रकार हम कहते हैं बड़े शिक्षित हो गए हैं पर हम क्या कर रहे हैं। भगवान कृष्ण आते हैं, कैसे वेदांत जीवन में उतरे, कैसे कड़े कानून बने देश में, कम से कम अपराधी उसके बल कारण कोई अपराध करने से जरा डरे, पर केवल कानून से नहीं होगा, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या वे कारण हैं जिससे अपराध हो रहे हैं। आप जरा विचार करके देखिए, आजकल के जो चित्र दिखाए जाते हैं, सिनेमा दिखाए जाते हैं, कितनी नंगई उसमें है, ये अभिनेता अभिनेत्रियां नंगे होकर के अधनंगे जो कांड कर रहे हैं, उस पर कभी आपने रोक लगाने की कोशिश की, कभी आपने सोचा कि इन बच्चों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मासूम बच्चे जिन्हें सवेरे से बैठ करके टीवी देख रहे हैं उनके मन को विषाक्त करने का आपको क्या अधिकार है, इस पर आप रोक नहीं लगा सकते। ऐसे फूहड़ कार्यक्रम टीवी में दिखाया जा सकते हैं, उस पर रोक नहीं लगा सकते, कहां जा रहा है ये देश। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे लोगों का जो समाज में अत्याचार करते हैं, अनाचार करते हैं, इनका नाश पहले कर, और जो इनको सहायता करते हैं उनका पहले नाश कर, अर्जुन दुर्योधन दुशासन को पहले मरवाते, और बाद में नाश ये भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इनको पहले मरवाते हैं, फिर नाश कराते हैं इनका दुर्योधन दुशासन का। ये श्री कृष्ण आदि कैसे वेदांत हमारे जीवन में उतरे। बीच में ये जो वेदांत जो केवल गिरिकंदरा में था उसे भगवान कृष्ण व्यवहारिक बनाने का उपदेश देते हैं। अर्ष युग में आते हैं श्री राम कृष्ण, किस तरह से मानो यह वेदांत जो है जो घोषित करता है सबके अंदर वही ब्रह्म है, सबके अंदर वही आत्मा है जिसकी घोषणा करता है, कैसे व्यावहारिक बने। इसलिए नरेंद्र नाथ जब मुक्ति की कामना करते हैं, श्री राम कृष्ण देव उनको निर्विकल्प समाधि का अनुभव कराते हैं, आनंद में डूबे हुए नरेंद्र नाथ आकर के उनके चरणों में लोटपोट करते हुए कहते हैं, गुरुदेव आज मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, जीवन का सब कुछ प्राप्त कर लिया और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए, सुखदेव जैसे ध्यान में डूबे रहते थे मैं भी ध्यान में डूबा रहूं, शरीर की याद आए तो थोड़ा भोजन कर लूं फिर से समाधि में चला जाऊं। दूसरे गुरु होते तो बड़े प्रसन्न होते, वाह कैसा चेला मिला है सब समय समाधि में डूबे रहना चाहता है, पर श्री राम कृष्ण प्रसन्न नहीं होते, भर्सना करते हुए कहते हैं, अरे नरेंद्र मैंने तो सोचा था तू तो एक महान वट वृक्ष के समान होगा जिसकी छाया तले संसार की ज्वाला से दग्ध लाखों लोग आएंगे शांति पाएंगे, पर तू तो अपने ही स्वार्थ की बात कह रहा है। अरे ये समाधि की अवस्था निम्न अवस्था है, उससे भी उच्च अवस्था है दूसरों को इस समाधि सुख का अनुभव कराना, दूसरों के लिए जीना। नरेंद्र नाथ लज्जित होकर कहते मैं भला क्या कर सकता हूं। श्री राम कृष्ण कहते तू तो तू, तेरी हड्डियों तक को कार्य करना होगा। कैसे प्रवृत्त कराते हैं, कर्म योग में प्रवृत्त कराते हैं श्री राम कृष्ण। और एक दिन की बात है, श्री राम कृष्ण नरेंद्र नाथ से कहते हैं, देख बेटा भूखे पेट में धर्म नहीं सहता, जो व्यक्ति भूखा हो उसको धर्म का उपदेश देना उचित नहीं है, भूखे के पास धर्म को रोटी के रूप में ले जाना चाहिए, नंगे के पास धर्म को कपड़े के रूप में ले जाना चाहिए। यही नरेंद्र नाथ सीख रहे हैं, गुरुदेव से सीख रहे हैं, भविष्य का विवेकानंद जो है कैसे उसे शिक्षित कर रहे हैं श्री राम कृष्ण। और एक दिन की घटना आप सभी जानते हैं, श्री राम कृष्ण बैठे भी हैं नरेंद्र नाथ अपने गुरु भाइयों के साथ, उनके सामने वैष्णव मत के बारे में समझा रहे हैं श्री राम कृष्ण। समझाते हुए कहते हैं, देखो वैष्णव मत में तीन बातों को प्रधानता दी गई है। पहली बात है नामे रुचि, भगवान के नाम में रुचि होनी चाहिए, भगवान और भगवान का नाम उसमें कोई अंतर नहीं, इस भाव से भगवान का कीर्तन करना चाहिए, गान करना चाहिए, यह नामे रुचि। दूसरी बात है जो वैष्णव जन है संत जन है उनकी सेवा करनी चाहिए, और तीसरी बात है जीवों पर दया करनी चाहिए। जैसे श्री राम कृष्ण कहते हैं जीवों पर दया समाधि में चले जाने, और समाधि से जब मन नीचे उतरता है श्री राम कृष्ण का उच्च स्वर में चिल्ला करके कहते हैं, अरे जीवों पर दया, जीवों पर दया, अरे तू कीटाणु कीट, तू भला जीवों पर दया करने वाला कौन होता है, तो कौन होता है दूसरों पर दया करने वाला, दया नहीं दया नहीं, सेवा सेवा, शिव ज्ञान से जीव सेवा, शिव ज्ञान से जीव सेवा, बस इतनी बात कही श्री राम कृष्ण। नरेंद्र नाथ ने सुना, गुरु भाई ने सुना, बाहर आकर नरेंद्र नाथ कहते हैं अपने गुरु भाइयों से कहते हैं, सुना तुमने आज गुरुदेव ने कैसी अद्भुत बात कही। गुरु भाई ने कहा क्या बात कही भाई, हम तो समझ नहीं पाए। नरेंद्र नाथ कहते तुमने सुना नहीं, हमें किसी पर दया करने का कोई क्या अधिकार है, हम कौन होते हैं जीवों पर दया करने वाले, जहां पर हम कहते हैं हम दूसरों पर दया कर रहे हैं हमारे अंदर अहंकार जागता है, हम सोचते हैं हम बड़े हैं, जिस पर हम दया कर रहे हैं दया का पात्र है। गुरुदेव ने कहा एकमात्र हमें सेवा करने का अधिकार है, और सेवा भी किस भाव से, जिसकी हम सेवा करें उसे साक्षात शिव समझ करके सेवा करें, नारायण समझ करके सेवा करें। मानो इसके इस उपदेश के माध्यम से गुरुदेव ने जंगल के वेदांत को कैसा व्यावहारिक बनाया जा सकता है आज गुरुदेव ने सिखाया। अगर भगवान ने मुझे शक्ति दी गुरुदेव के इस उपदेश का प्रचार मैं संसार के कोने कोने में करूंगा। यह स्वामी विवेकानंद किस तरह हमारा अपने गुरुदेव के इस उपदेश को धारण करते हैं, रामकृष्ण मठ मिशन की स्थापना करते हैं, उसका आदर्श वाक्य बनाते हैं, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मा की मुक्ति का प्रयास करो, जंगल में जाके तपस्या करके नहीं, कहते जगत हिताय च, संसार का कल्याण करते हुए आत्मा की मुक्ति का प्रयास। इस युग में भी आते हैं श्री रामकृष्ण विवेकानंद, कैसा ये वेदांत जो है व्यावहारिक बने, हमारे जीवन में उतरे और इस तरह से उतर सकता है। हम सब के अंदर वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, और वही आत्मा सब दूसरों के अंदर भी है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अरे तुम ईश्वर को खोजने कहाँ जाते हो, जो दीन है, दुखी है, प्रताड़ित है, पीड़ित है, यही तो भगवान के जीते जागते स्वरूप है। तुम गंगा के किनारे बैठ करके जल के लिए कुआं खोद रहे हो, तुम्हारे जैसा मूर्ख कौन होगा, जहां गंगा में इफरात जल बहा जा रहा है उसे छोड़कर जल के लिए तुम कुआं खोद रहे हो। इनकी सेवा करो, दीन दरिद्रों की सेवा करो। कैसी बात कहते स्वामी जी, कहते हैं किस तरह से उनका मन व्यथित था गरीबों को उठाने के लिए, कैसे गरीब उठे, कैसे यह देश जागे, और इस तरह मानो इस वेदांत को मां व्यावहारिक रूप देते हैं, और आज इसी की आवश्यकता है। हमारे ये उपनिषद, हमारे ये धर्म ग्रंथ मानो हमारे इस स्वरूप का कहते हैं, हमारे अंदर जो सच्चिदानंद है वही सच्चिदानंद सबके अंदर विद्यमान है। कैसे सबके अंदर उस प्रभु को देखने का प्रयास करें, यथा साध्य सेवा करने का प्रयास करें, और यह ख्याल रखें कि इसके माध्यम से हम दूसरों का उपकार नहीं कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम अपना ही कल्याण कर रहे हैं, अपना ही उपकार कर रहे हैं। इसी के लिए अपने विचार बाणी को विराम देता हूँ।